राधा माधव जय कुंज राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय हो जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय हो जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय हो जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी जय हो जय हो जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी जय हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर নিতাই গর হরিব 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 জয় প্রভুপদা জয় প্রভুপদা ॐ विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्रीमती तुलसी शालिग्राम जलदान महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय 22। अध्याय का नाम है चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। श्लोक संख्या 45। बोलिए मेरे पीछे। सेनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्वम एव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेदशास्त्र विदर्हति सेनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्वम एव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेदशास्त्र विदर्हति सेनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्वम एव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेदशास्त्र विदर्हति
सेनापत्यम च राज्यम च
वैष्णव देविया
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्र विदर्हति
शब्दार्थ बोलिए सेनापत्यम। सेनापति का पद च तथा राज्यम शासक का पद च तथा दंड अनुशासन नेतृत्वम नेतृत्व एवं निश्चय ही च तथा सर्व समस्त लोक अधिपत्यम लोगों का स्वामित्व च तथा वेद शास्त्र वैदिक साहित्य का ज्ञाता अर्हति पात्र होता है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए चूंकि केवल ऐसा व्यक्ति जो वैदिक ज्ञान के अनुसार पूर्ण रूप से शिक्षित हो सेनापति राज्य का शासक दंडदाता तथा सारे लोक का स्वामी होने का पात्र होता है। अतः पृथ्वी महाराज ने कुमारों को सर्वस्व अर्पित कर दिया। तो यहाँ जो अनुवाद हमने पढ़ा है उसमें प्रभुपाद ने कुछ शब्द अपनी ओर से जोड़े हैं समझाने के लिए। इसमें प्रभुपाद लिखने अनुवाद में अतः पृथु महाराज ने कुमारों को सर्वस्व अर्पित कर दिया, ये श्लोक में नहीं है लेकिन प्रभुपाद अनुवाद में लिखा है। क्यों? उसको समझाने के लिए कि वैसे तो पृथु महाराज बोल रहे हैं और पिछले कितने श्लोकों से बोल रहे हैं 42वें श्लोक से प्रभुपाद पृथु महाराज बोल रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4 ये चौथा श्लोक है पृथु महाराज जो बोल रहे हैं और आगे भी 5वां श्लोक बोलेंगे 6ठा श्लोक बोलेंगे तो कुल मिला के 6 श्लोक बोल रहे हैं, है ना। तो लेकिन प्रभुपाद अनुवाद में जो शब्द जोड़ रहे हैं ये हमें समझने के लिए हैं कि पृथु महाराज इस बात को कह रहे हैं और चार कुमारों को अपना सब कुछ अर्पित कर रहे हैं। अपना सेनापति का पद भी और अपना पूरा राजा का पद भी और दंड देने का भी अधिकार और नेतृत्व का भी अधिकार और सर्व लोकाधिपत्य का भी अधिकार सब कुछ चार कुमारों को वो भेंट कर रहे हैं। और इस श्लोक में कारण बता रहे हैं कि कारण क्या है, क्योंकि जो वेद शास्त्र को जानने वाला है वही इन सब पदों के योग्य होता है। तो मैं आपको सब कुछ ये सब पद आपको ही दे रहा हूँ। तो पृथ्वी महाराज जो है तो यहाँ प्रभुपाद जो है ये शब्द जो लिख रहे हैं अनुवाद में तो इसमें कोई दोष नहीं है, समझना चाहिए कि अनुवाद में जो है क्यों लिखे हैं, क्योंकि प्रभुपाद के जो अनुवाद हैं वो भी छोटे छोटे जो है तात्पर्य ही हैं। और जो है इस श्लोक को भी कोई व्यक्ति अगर पढ़ता है तो वस्तु स्थिति समझ सकता है कि वास्तव में वस्तु स्थिति क्या है। तो पृथु महाराज ये सब भेंट करने के लिए क्योंकि कोई प्रश्न पूछेगा कि आप ये सब चार कुमारों को भेंट कर रहे हैं, चार कुमार तो बिल्कुल निष्प्रिय और बिल्कुल एकांती हैं, एक स्थान में ठहरते भी नहीं हैं, कहीं न कहीं जाते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, तो ये क्या करेंगे आपके सेनापति का पद लेकर के राज्य का पद लेकर के दंड देने का कार्य ये क्यों करेंगे। तो पृथ्वी महाराज इस श्लोक में कारण बतला रहे हैं कि कारण ये है इसलिए मैं आपको सब अर्पित कर रहा हूँ, सब कुछ समर्पित कर रहा हूँ, है ना। अब हम प्रभुपाद का तात्पर्य सुनेंगे, प्रभुपाद क्या लिखते हैं। शील प्रभुपाद की इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल साधु पुरुषों तथा कुमारों जैसे ब्राह्मणों के आदेशों पर राज्य का शासन चलाया जाना चाहिए। तो प्रभुपाद ये समझा रहे हैं तो राजतंत्र जो है जो पहले होता था वो इस प्रकार से होता था और वे जो राजा होते थे वो राजर्षि होते थे। राजर्षि का मतलब है जो राजा के रूप में ऋषि हो और ऋषि का मतलब क्या है जो वेद शास्त्र को जानने वाला हो। तो पृथु महाराज वेद शास्त्र को जानने वाले और पृथु महाराज स्वयं इन सब पदों के योग्य हैं, इन सब पदों को पाने के योग्य हैं। और वास्तव में तो राजा ऋषि राजा हो और ऋषि हो तो जिसमें दोनों गुण हो वही इन पदों का मतलब योग्य होता है, इन पदों के योग्य होता है ना। लेकिन फिर पृथु महाराज कह रहे हैं कि नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ, आप लोग योग्य हैं, है ना। तो ये उनकी विनम्रता है, पृथु महाराज की विनम्रता है। और जो राजा के रूप में ऋषि होते थे तो वे ये सब जो भार है, राज्य का जो भार है और शासन का भार है और सेना का भार है, ये सब उन ऋषियों को या ब्राह्मणों को सौंपते थे, उनके ऊपर रखते थे, पूरा अधिकार उनको देते थे। और राजा स्वयं सेवक के रूप में कार्य करते थे। राजा यद्यपि सिंहासन पर बैठते थे, लेकिन जो ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं ना, कभी भी आए तो वे अपने सिंहासन को छोड़ करके खड़े हो जाते थे और उनको महाराज बोलते थे। राजा जो राज सिंहासन पर बैठता है, राज्य चला रहा है, वो राजा है। लेकिन वे जो ब्राह्मण हैं, जो ऋषि हैं, है, जिनके अधीन होकर के राजा कार्य करता है, वो उनको क्या बोलता था? महाराज। वो महाराज हैं, महाराजा। तो महाराजा वो नहीं है, पृथु जो है राजा हैं, इनको जो है महाराजा। तो ये जो है शिष्टाचार है, राजाओं का ये शिष्टाचार है, है ना। और गीता का जो उपदेश है, भगवान भी गीता में कहते हैं कि एवं राजर्षियो विदु एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियो विदु, राज ऋषियों ने इस संदेश को परंपरा के अनुसार प्राप्त किया। तो ऐसे जो राजा के रूप में ऋषि होते थे तो वे राज्य करते थे और वे अपने को राज्य का स्वामी नहीं मानते थे। अब ये पूरा का पूरा जो अधिकार है वो उन ब्राह्मणों के ऊपर सौंपते थे, उन ऋषियों के ऊपर सौंपते थे जो कि वेद शास्त्र को गहराई से जानने वाले थे और उनके मार्गदर्शन के आधार पर राजा निर्णय लिया करते थे। राजा के जो मंत्री मंडल होता था तो उसमें भी ब्राह्मण होते थे, तो उनके ही मार्गदर्शन पर राजा निर्णय लिया करता था। और दंड, किसको दंड देना है, किसको दंड नहीं देना है। और नेतृत्व, नेतृत्व का मतलब है मार्गदर्शन। नेत्र, नेत्र जो हमारे नेत्र हैं तो ये हमें रास्ता दिखलाते हैं, है ना। तो जो नेता होता है, तो नेता शब्द बना है नेत्र से। वास्तव में असली जो शब्द है, शुद्ध शब्द है नेता का, वो नेत्र है। तो समाज का जो नेत्र है, है तो वो भी कौन है? ब्राह्मण ही होते हैं। तो नेतृत्व तो ये भी जो है मतलब ब्राह्मणों का कार्य है, समाज को जो है रास्ता दिखाना, दृष्टि प्रदान करना। तो वही आंखें होते हैं जो ब्राह्मण है, वही समाज की आंखें होते हैं जो वेद शास्त्र को जानने वाले हैं। और सर्वलोकाधिपत्यमता, सब लोगों के ऊपर भी अपना आधिपत्य जमाना, शासन करना, तो ये भी जो है ब्राह्मणों का अधिकार है। तो ये पृथु महाराज जो ये सिद्धांत बतला रहे हैं, ये बहुत गहरा सिद्धांत है। हालांकि ब्राह्मण लोग नहीं राज्य करते और वे जो है किसी न किसी को सौंपते हैं, किसी क्षत्रिय को ही सौंपते हैं, लेकिन ऐसे क्षत्रिय को सौंपते हैं जो उनके अधीनस्थ होकर के राज्य करे, है ना। और वो जो है राज्य का अधिकारी अपने को ना माने। तो यहां पर प्रभुपाल लिखते हैं, जब संसार भर में राजतंत्र का बोलबाला था तो राजा को साधु पुरुष तथा ब्राह्मणों की परिषद ही निर्देश देती थी, है ना। तो राजतंत्र ये है, आजकल राजतंत्र नहीं है, आजकल तो प्रजातंत्र है, है ना। और प्रजा कैसी है? शूद्रों की प्रजा है, तो शूद्र लोग ही शासन करते हैं, है ना। तो इसीलिए सब प्रकार की अव्यवस्था, कुव्यवस्था, दुर्व्यवस्था हो रही है, है ना। लेकिन पहले जो है एक व्यक्ति होता था शासन करने वाला और उसके ऊपर बहुत से ब्राह्मण, बहुत से ऋषि होते थे जो कि उसको मार्गदर्शन करते थे, तो वो जो है पूर्ण व्यवस्था होती थी शासन की। आगे प्रभुपाल लिखते हैं, राज्य का शासक अर्थात राजा ब्राह्मणों के दास के रूप में अपना कार्य करता था, है ना। वो कभी भी अपने को अधिकारी नहीं समझता था, उसकी चेतना हमेशा इसी प्रकार की रहती थी कि अधिकारी, शासन करने वाले तो ब्राह्मण ही है ना। और अगर ब्राह्मण भी कोई अगर प्रजा में जो है कोई ब्राह्मण ने अगर कोई अन्याय कर दिया है तो राजा को बहुत सावधानी से विचार करना होता था कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को क्या दंड दिया जाए, ब्राह्मण को क्या दंड दिया जाए, ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है ना, तो क्या दंड देना क्या नहीं दंड देना इस पर विचार किया जाता था ना? तो ये सब जो है मतलब भावना होती थी, ऐसी चेतना होती थी। आगे प्रभुपाद लिखते हैं ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण या राजागण तानाशाह थे, तानाशाही नहीं थी। एक तानाशाही भी हो जाए राज्य की व्यवस्था कहलाती है तानाशाही है ना, लेकिन वो तानाशाही नहीं होती थी इस प्रकार की है? आगे नहीं वे अपने को राज्य का स्वामी समझते थे। राजा भी वैदिक साहित्य में पारंगत होते थे और इस तरह वे ईशोपनिषद के इस आदेश से परिचित होते थे, ईशावास्यम इदम सर्वम, जो कुछ भी विद्यमान है वो भगवान का है। यानी कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना भावित होते थे, ईशावास्यम ईश भावना से भावित होते थे कि सब कुछ ईश्वर का है ना, और ईश्वर के बाद किनका अधिकार है, इन ऋषियों का, इन ब्राह्मणों का अधिकार है, और उनके आदेश से फिर मुझे कुछ अधिकार मिले हैं। तो राजा जो है अपने को भगवान के दास का दास समझता था ने? कि भगवान के नीचे जो है ये लोग हैं, कौन, जो वेद शास्त्र को जानने वाले विशेष ब्राह्मण हैं और उनके नीचे मैं कार्य कर रहा हूँ, तो मैं भगवान के दास का दास हूँ है ना, इस प्रकार की भावना होती थी राजा के अंदर। आगे प्रभुपाद लिखते हैं भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि वे सभी लोगों के स्वामी हैं, सर्वलोक महेश्वरम। तो यहाँ पर इस श्लोक में शब्द आया सर्वलोकाधिपत्यम, हाँ तो जो वेद शास्त्र को जानने वाले हैं वही सर्वलोकों के अधिपति होने के योग्य हैं। क्यों? क्योंकि वेद शास्त्रों से उनको पता है कि कौन है असली अधिपति, सर्वलोक महेश्वरम कौन है, कृष्ण है। तो पृथ्वी महाराज क्या कह रहे हैं कि जो वेद शास्त्र को जानने वाले हैं तो उनको ही अधिकार है सर्व लोगों के अधिपति बनने का। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना, उनकी चेतना में क्या है कि कृष्ण है, वे नहीं है। तो जिनकी चेतना में ये है कि मैं नहीं हूं स्वामी नियंता, मैं नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं है ना, तो उसी को ही भोगने का अधिकार है, स्वामी बनने का अधिकार, क्योंकि उसकी चेतना में हमेशा ये रहता है कि कृष्ण ही भोगता है, कृष्ण ही स्वामी है ना, कृष्ण ही नियंत्रक। तो वही जो है राज्य के अधिकारी हैं, शासन के अधिकारी हैं, दंड देने के अधिकारी हैं, कि दंड भी देंगे तो किसी पर पक्षपात नहीं करेंगे, क्योंकि वो कृष्ण की व्यवस्था के अनुसार ही दंड देंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि अपने व्यक्तिगत कारण से मैं दंड नहीं दे सकता हूँ। अगर मैं व्यक्तिगत कारण से किसी को दंड दूंगा तो मुझे भी दंड देने वाले ऊपर कृष्ण है, वो कृष्ण भावना भावित है ना, तो ऐसी कृष्ण चेतना में व्यक्ति जो है दंड देने का अधिकारी होता है, क्योंकि वो जानता है कि कृष्ण के नियम के अनुसार, कृष्ण के निर्णय के अनुसार किसको दंड देना चाहिए उसी को वो दंड देगा, और जितना दंड देना चाहिए उतना ही दंड देगा, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं। अगर कम दंड देगा तो भी उसको दंड मिलेगा, और ज़्यादा दंड देगा तो भी उसको दंड मिलेगा, इसलिए वो जो है बहुत संतुलित रहता है कि मुझे कितना दंड देना है किसको। तो ये जो है प्रभुपाल लिख रहे हैं कि वे सभी लोगों के स्वामी हैं, कृष्ण भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि वे सभी लोगों के स्वामी हैं, सर्वलोक महेश्वरम, ऐसा होने से कोई भी अपने को राज्य का स्वामी नहीं कह सकता। तो वे कहलाते हैं राज्य के स्वामी, वो कहलाते हैं, लेकिन जब भी उनको राज्य का स्वामी कहा जाता है तो वे सुनते जरूर हैं, लेकिन तुरंत उनकी चेतना में ये बात आती है कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ है ना। तो वही राज्य के स्वामी होने के योग्य हैं जिनकी चेतना में हमेशा ये बात रहती है कि मैं स्वामी नहीं हूँ, कृष्ण ही हैं सबके स्वामी है ना, तो वही स्वामी बनने के योग्य है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं राज्य के राजा राष्ट्रपति या अध्यक्ष को ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि वो स्वामी नहीं अपितु दास है, और अगर वो अपने को स्वामी समझता है, राज्य का स्वामी समझता है या किसी भी क्षेत्र का स्वामी समझता है अपने को, तो वो फिर माया का दास है, या तो वो माया का सेवक है या कृष्ण का सेवक है, स्वामी तो किसी हालत में है ही नहीं जो वेद शास्त्र को जानने वाला व्यक्ति है वो जानता है कि मैं स्वामी बन नहीं सकता हूँ। अगर मैं स्वामी समझूंगा अपने को तो किसका दास बन जाऊंगा? माया का दास बन जाऊंगा। और माया जो है हमें ये भावना प्रदान करती है कि तुम स्वामी हो, तुम स्वामी हो, और लातें मारती है। माया जो है इस प्रकार से हमें स्वामी बनाती है, तो हम इस प्रकार माया के दास बनते हैं कि अपने को स्वामी समझें और बार बार लातें खाएं। और फिर माया कहती है कि अब हो गया, अब आगे से नहीं होगा, अब तो तुम स्वामी हो, और फिर लातें मारती है। और फिर कहती है अब कुछ नहीं है, अब आगे से तुम स्वामी हो, और लगातार लातें खाता रहता है वो, माया की लातें। तो जो वेद शास्त्र को जानने वाला है वो जानता है कि अगर मैं स्वामी बनने की कोशिश करूंगा तो तुरंत ही माया का दास बन जाऊंगा, और माया की लातें खाने की सेवा और कुछ नहीं खाऊंगा, एकमात्र मेरा खाना क्या है? लातें खाना है मेरा काम, केवल लातें खाना है, और अपने को समझना स्वामी कि मैं स्वामी हूँ, है ना। तो वेद शास्त्र को जानने वाला व्यक्ति जो है इस प्रकार की चेतना में होता है वही स्वामी बनने योग्य, सर्व लोकाधिपत्यम, सब लोगों का अधिपत्य होने के योग्य है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वर्तमान युग के राजा, वर्तमान युग मतलब कौन सा युग? कलयुग। वर्तमान युग के राजा या राष्ट्रपति ये भूल जाते हैं कि वे ईश्वर के दास हैं, ये भूल जाते हैं कि वे ईश्वर के दास हैं। इसका कारण क्या है? आज की शिक्षा यही कारण है। आज का जो विज्ञान है यही कारण है। आज का जो विज्ञान है, आज की शिक्षा है, तो वो ईश्वर को नहीं मानती। ईश्वर की दुआ छोड़ो, हम अपने को ही नहीं मानते कि हम शाश्वत आत्मा है। ये शरीर नष्ट होने के बाद आत्मा नष्ट नहीं होती, दूसरा शरीर प्राप्त करती है। भगवान को जाना तो बहुत दूर की बात है, भगवान को माना तो बहुत दूर की बात है, हम अपने को ही नहीं मानते। तो आज की जो शिक्षा है, आज का जो विज्ञान है, वो इतना अधिक अज्ञान में है कि फिर ये जो कृष्ण चेतना है उसकी कोई संभावना ही नहीं है। उसकी संभावना कहाँ है? कृष्ण चेतना की संभावना ही कहाँ है? अगर आप अपने को नहीं मानते कि आप शरीर से अलग एक नित्य वस्तु हैं, तो फिर कहाँ कृष्ण चेतना की संभावना? कोई संभावना नहीं है, है ना। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वर्तमान युग के राजा या राष्ट्रपति ये भूल जाते हैं कि वे ईश्वर के दास हैं, वे अपने को जनता का दास समझते हैं। हाँ, प्रजातंत्र, जनता का दास, क्योंकि जनता ने ही वोट दिए हैं, उनके आधार पर वो बना है, तो अपने को जनता का दास समझते हैं, है ना। अपने को जनता का दास समझते हैं। वर्तमान प्रजातंत्र सरकार अपने को जनता की सरकार घोषित करती है। ऐसी सरकार जो जनता द्वारा जनता के लिए बनी है, वो यही नारा है ना, डेमोक्रेसी इज फॉर पीपल बाय पीपल एंड फ्रॉम फॉर फॉर द पीपल बाय द पीपल फ्रॉम द पीपल फॉर द पीपल है। फॉर तीन है ना, ऑफ, अच्छा ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो प्रभुपाद ये लिखते हैं कि ऐसी सरकार जो जनता द्वारा बनी है और जनता के लिए बनी है, किंतु वेदों में इस प्रकार की सरकार की स्वीकृति नहीं दी गई, क्योंकि जनता, सामान्य जनता अबोध है, उसे अपने ही हित का ज्ञान नहीं है, अपने स्वार्थ का पता नहीं है। तो जनता के द्वारा जो भी चुनाव होगा वो सब अज्ञान में ही होगा। तो बस शुरू से लेकर के आखिर तक अज्ञान ही अज्ञान है। प्रजातंत्र है क्या? घोर अज्ञान है। इसलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी डीमन एंड क्रेजी, डेमोक्रेसी है। प्रभुपाद ने जो है शब्द का जो विश्लेषण किया है, शब्द विच्छेद, संधि विच्छेद किया है, डेमोक्रेसी का मतलब डीमन एंड क्रेजी इक्वल टू डेमोक्रेसी, है बिल्कुल सही है, क्योंकि बिल्कुल अज्ञान में ही जो है प्रजा होती है, और प्रजा जो है वोट देती है, उसके आधार पर कोई शासक बनता है ना। तो हाँ, प्रभुपाद लिखते हैं किंतु वेदों में इस प्रकार की सरकार की स्वीकृति नहीं दी गई है। वेदों का मत है कि राज्य का संचालन भगवान को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए, अतः इसे भगवान के प्रतिनिधि द्वारा शासित होना चाहिए। यदि राज्य का अध्यक्ष वैदिक ज्ञान से विहीन हो तो उसे शासक नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि भगवान पर आधारित पूरी जो आवश्यकताएं हैं ये भगवान से आ रही हैं, और अगर हम भगवान को प्रसन्न नहीं करते हैं तो भौतिक प्रकृति सहयोग नहीं देगी, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं होगी। जैसे अन्नात भवन्ति भूतानि, अन्न बहुत मुख्य आवश्यकता है, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के लिए अन्न की विशेष आवश्यकता है ना। इन पर्जन्याद अन्न संभव, वर्षा से ही अन्न पैदा होता है, और वर्षा आपके हाथ में नहीं है, ये ज्ञात भवति पर्जन्यो, तो जो वर्षा है वो यज्ञों से होती है, तो भगवान को प्रसन्न करने से ही वर्षा होती है। तो भगवान की प्रसन्नता पर आधारित है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति है। तो प्रभुपाद लिखते हैं राज्य का संचालन भगवान को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए, अतः ऐसे भगवान के प्रतिनिधि द्वारा शासित होना चाहिए। यदि राज्य का अध्यक्ष वैदिक ज्ञान से विहीन हो तो उसे शासक नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि सभी उच्च सरकारी पद ऐसे व्यक्तियों के लिए हैं जो वेदों की शिक्षाओं से अवगत हों। तो जितने भी सरकारी पद हैं, सरकारी पद क्या है, सेनापति का जो पद है आर्मी कमांडर है, और राज्य का अधिकारी है, और दंड देने का अधिकारी है, और नेतृत्व का अधिकारी है जो समाज को दिशा प्रदान करे है, और सर्वलोकाधिपत्य, सब लोगों का अधिपति बनने का अधिकारी। ये जितने भी सरकार के जितने भी ऊंचे पद हैं, सरकारी पद हैं, ये ऐसे व्यक्तियों के लिए हैं जो वेदों की शिक्षाओं से अवगत हों। वेद शास्त्रविद अर्हति, अर्हति का मतलब है योग्य होता है, इन सब पदों की योग्य, इन सब पदों की जो एकमात्र योग्यता है वो वेद शास्त्रविद होना चाहिए। वेद शास्त्र का जो जानकार हो वही इन पदों का अधिकारी है, लेकिन अभी इन पदों के जो योग्यता है वो इस आधार पर नहीं होती, इस आधार पर नहीं होती है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वेदों में निश्चित आदेश है कि राजा, सेनापति, सैनिक तथा नागरिक किस प्रकार आचरण करें। दुर्भाग्यवश इस युग में अनेक ऐसे तथा कथित दार्शनिक हैं जो किसी प्रमाण का उदाहरण दिए बिना आदेश देते हैं, और अनेक नेता उनके अवैधानिक आदेश का पालन करते हैं, फलता लोग प्रसन्न नहीं हैं। तो चूंकि वेद शास्त्रों के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिए जाते हैं और अपनी मनोकल्पना पर आधारित निर्णय लिए जाते हैं, इसलिए कोई प्रसन्न नहीं होता और नई नई समस्याएं पैदा होती हैं। जिस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ उपाय बनाया है, कुछ निर्णय लिया है, तो दूसरी प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं और नई नई समस्याएं पैदा होती हैं, और एक समस्या को दूर करने के लिए कोई निर्णय लिए है और दो समस्याएं और पैदा हो जाती हैं, नहीं है, तो कभी भी पूर्णता नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण ज्ञान, शासन का भी जो पूर्ण ज्ञान है वो कहाँ से आ रहा है, पूर्ण पुरुष से आ रहा है। तो पूर्ण पुरुष की जो शिष्य परंपरा है उसके आधार पर ही हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत द्वंद्वात्मक साम्यवाद का आधुनिक सिद्धांत जिसका अनुसरण साम्यवादी सरकारें कर रही हैं पूर्ण नहीं है। तो साम्यवादी सरकार, कम्युनिस्ट जो कंट्रीज हैं, तो वे कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है उसका अनुसरण कर रही हैं। द्वंद्वात्मक साम्यवाद है, द्वंद्व का मतलब है अपने को शरीर मानना, अपने को शरीर मानना, और द्वंद्व के आधार पर ही हर कार्य करना, हर सभी निर्णय द्वंद्व के आधार पर करना। लेकिन द्वंद्वातीतो, 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 द्वंद्व से अतीत होना, जो व्यक्ति अपने को शरीर नहीं समझता है, अपने को शरीर की चेतना से ऊपर उठा लेता है तो द्वंद्व से अतीत हो जाता है। तो आजकल की जो जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, साम्यवादी सरकार हैं, ये कार्ल मार्क्स के जो साम्यवादी सिद्धांत है उसका अनुसरण कर रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद क्या कहा करते थे, प्रभुपाद करते थे कि हम भी साम्यवाद को मानते हैं, हम भी साम्यवाद को मानते हैं, लेकिन अंतर क्या है हमारे साम्यवाद में और आपके साम्यवाद में? आपके साम्यवाद के अनुसार जितनी संपत्ति है वो देश की मानते हैं, जितनी भी संपत्ति है देश के अंदर वो देश की है और सबको बराबर बंटवारा मिलना चाहिए, है ना। तो आपका जो साम्यवादी सिद्धांत इस पर आधारित है, ये हमारा सिद्धांत किस पर आधारित है कि जितनी भी संपत्ति है वो कृष्ण की है और कृष्ण ने जिसको दिया उसको उतना ही उसको उतने में संतुष्ट होना चाहिए। तो कृष्ण देते भी हैं, कृष्ण देते भी हैं और हमें जो है उतने से संतुष्ट होना है। तो हमें मां गृधा कर्ष शुद्धनम, तो दूसरे के अधिकार पर हम अपना अधिकार ना करें। ईसा वाष्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत याम जगत, ये साम्यवाद है ईशोपनिषद में, ये साम्यवाद बताया गया है। ईसा वाष्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत याम जगत, पूरे जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं सब में ईश्वर का अधिकार है। तेने तेने भुंजी था और उनके द्वारा दिया हुआ भोगो यानी प्रसन्न हो संतुष्ट हो, मां गृधा कर्ष शुद्धनम और दूसरे के अधिकार में अपना अधिकार मत जताऊं, क्योंकि ईश्वर का अधिकार भी है और ईश्वर देने वाले भी हैं। लेकिन जहां तक आप मानते हैं कि भी देश की संपत्ति है तो देश तो क्या है, एक जल वस्तु है तो वो तो देगी नहीं, तो हम देश की वस्तु को बराबर बराबर बंटवारा करेंगे सबको बराबर, गलत है। कौन किसके कितनी वस्तु के योग्य है, क्या पाने के योग्य है, तो ये तो निर्णय करेगा कोई चेतन व्यक्ति निर्णय करेगा। तो कृष्ण का अधिकार है और कृष्ण देने वाले हैं, तो किसको कितना मिलना चाहिए वो कृष्ण की ओर से मिलता है। तो आपके ऊपर कोई फिर भार ही नहीं है कि भाई हमें बंटवारा करना है। जैसे माँ होती है, है तो उसके जो है जितने बच्चे हैं 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों पर वो समान है, ये भी साम्यवाद है, वो 10 बच्चों पर समान है। लेकिन किसी बच्चे को जो है चपाती देती है, सब्जी देती है, दाल नहीं देती क्योंकि उसको नुकसान करेगा, और किसी को कम खिलाती है किसी को ज़्यादा खिलाती है, वो जानती है कि इसको ज़्यादा खिलाएंगे तो नुकसान करेगा। तो ये जो है माता का क्या है, ये साम्यवाद है, तो उसकी समता है लेकिन समान बंटवारा नहीं करती। किस बच्चे की कितनी उम्र है उसको कितना भोजन मिलना चाहिए उतना देती है, और जिसकी उम्र कम है उसको उतना भोजन नहीं देगी, वो जानती है वो नुकसान करेगा। हाँ, और किसी बच्चे को दूध ही पिलना है, दूध ही मिलना है तो दूध ही देगी, अन्न नहीं देगी। तो साम्यवाद का मतलब ये व्यवहार में समानता नहीं होती है, भावना में समानता होती है। माता की भावना सब बच्चों के प्रति समान है, और माता जो है उसी प्रकार से देती है जिस प्रकार से वो सदुपयोग करे उस चीज का और दुरुपयोग ना करे। तो अगर ईश्वर का अधिकार है हर वस्तु में तो ईश्वर की ओर से जिसको जितना मिला है उसमें संतुष्ट रहो और दूसरे का छीनो नहीं, तो कितना मतलब ये पूर्ण समाज हो जाएगा, कितना पूर्ण समाज। प्रभुपाद बताते हैं कि भारत में जो है चूंकि इस प्रकार की भावना है लोगों के अंदर तो बीच में जो है जब दूसरा महायुद्ध हुआ, विश्वयुद्ध हुआ था, तो ब्रिटिश सरकार ने बहुत से जो है ये अन्न है चावल है ये सब जो समुद्र में डुबो दिए थे, जर्मन के जो लोग हैं वो उनको ना लें। तो भारत में फिर बड़ा अकाल पड़ा था, भारत में बड़ा अकाल पड़ा था, लेकिन भारतीय जनता में चूंकि कृष्ण चेतना है कि भगवान के द्वारा मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो भगवान की इच्छा, तो किसी ने जो है किसी की जेब नहीं काटी, किसी ने किसी की चोरी नहीं की, किसी ने किसी को छीना नहीं, छीना छपटी नहीं की। तो किसी विदेशी ने कहा कि अमेरिका में होता तो विद्रोह हो जाता, विद्रोह हो जाता, लेकिन भारत में कोई विद्रोह नहीं हुआ। तो कुछ सुख मिलता है कुछ दुख मिलता है, तो व्यक्ति जो है कृष्ण भावना व्रत में है उसको उसी प्रकार से स्वीकार कर लेते हैं बिना किसी द्वंद्व के, उनको जो है इस बात का जो है कुछ विशेष हर्ष नहीं होता है, ना किसी विशेष शोक होता है कि उन्हें ज्यादा मिला तो हर्ष हो जाए और कम मिला तो शोक हो जाए, कि भगवान का दिया हुआ है उसे में संतुष्ट है। तेने तक तेने भुंजी था, तो भारत में चूंकि कृष्ण चेतना अब वो खत्म हो रही है, तो शिक्षा के कारण क्योंकि विदेशों की शिक्षा है अब भारत में आ गई, अब ईश्वर विहीन चेतना ईश्वर विहीन शिक्षा है, तो अब भारत में भी जो है सब हर तरह से असंतुष्ट लोग असंतुष्ट हो रहे हैं और स्ट्राइक हड़ताल कर रहे हैं, मजदूरों की हड़ताल हो रही है, इधर इनकी हड़ताल उनकी हड़ताल, हमारी मांगे हमारी मांगे, सब अपनी अपनी मांगे कर रहे हैं। पहले कोई मांगे नहीं होती थी क्योंकि ब्राह्मण हैं क्षत्रिय हैं वैश्य हैं शूद्र हैं उसी में संतुष्ट रहते थे, जो ईश्वर की इच्छा से प्राप्त हो गया उसमें संतुष्ट होते थे। तो ये साम्यवाद, तो प्रभुपाद कहते हैं हमारा साम्यवाद और आपके साम्यवाद में कुछ अंतर है, साम्यवादी तो हम भी हैं, हम भी साम्यवादी हैं। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत द्वंद्वात्मक साम्यवाद का आधुनिक सिद्धांत जिसका अनुसरण साम्यवादी सरकारें कर रही हैं पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है, क्योंकि तो बहुत बड़ी अपूर्णता ये कमी क्या है अपने को शरीर समझना। और जहाँ प्रारंभ में ही कुछ गलती होती है तो आप जितनी गणना करते हैं उतना और गलत होती जाती है। कोई गणित का सवाल होता है, आपने पहले ही से ही जो है दो की जगह जीरो कर दिया तो जितना भी आप गणना करेंगे वो सब और ज्यादा गलत होता जाएगा। तो हम अपने को जो है शरीर समझ करके जो भी सिद्धांत बनाते हैं और फिर उसका जितना भी हम पालन करते हैं उसमें उतनी ज़्यादा ही और गलतियां होती जाती हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत द्वंद्वात्मक साम्यवाद का आधुनिक सिद्धांत जिसका अनुसरण साम्यवादी सरकारें कर रही हैं पूर्ण नहीं है। वैदिक साम्यवाद के अनुसार राज्य के किसी भी व्यक्ति को भूखों नहीं मरना चाहिए। इस समय ऐसे अनेक भ्रष्ट संस्थाएं हैं जो भूखे लोगों को भोजन प्रदान करने के उद्देश्य से जनता से धन एकत्र कर रही हैं किंतु वे इस धन का निश्चित रूप से दुरुपयोग ही करती हैं। तो धन का दुरुपयोग करते हैं। तो पहले क्या था कि हर व्यक्ति जो है अतिथि को भोजन कराता था, अतिथि वो होता था जो चल रहा है उसकी कोई तिथि नहीं कि किस घर में वो कब रुक जाए, क्योंकि तो पहले कोई साधन नहीं होते थे, ट्रेन नहीं होती थी, प्लेन नहीं होते थे, कोई साधन नहीं, पैदल ही लोग चलते थे और हजारों किलोमीटर की दूरी पैदल चलते थे। तो उनके पास इतना भोजन तो होता नहीं था कि इतना कितने दिन तक वो रखें, तो भोजन थोड़ा सा उन्होंने लिया वो ख़त्म हो गया, तो किसी भी घर में वो जो है रुक जाएँ विश्राम करने के लिए और भोजन के लिए। तो हर घर में ये सिद्धांत था, वैदिक सिद्धांत था, अतिथि का जो है स्वागत करो, अतिथि का सत्कार करो, तो उसको जो है विश्राम करने के लिए कुछ जगह देना है भोजन के लिए। तो कोई होटल नहीं थे और पानी नहीं बिकता था बोतलों में, हर घर में भोजन और पानी मिलता था हर व्यक्ति का जो है ये बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता था कि अतिथि आए। कोई अतिथि पर वो नहीं है जो जिन्होंने अपना धंधा बना लिया कि भाई वो मांग मांग के खाएंगे भोजन करेंगे और रोज आ जाए, अतिथि वो नहीं कहलाता है, अतिथि वो नहीं कहलाता है, अतिथि वो कहलाता है जो कि यात्री है पथिक है और वो कितने दिन से यात्रा कर रहा है, उसको विश्राम नहीं मिला है, भोजन नहीं मिला है, कई दिनों से विश्राम नहीं मिला, कई दिनों से भोजन नहीं मिला है, और वो अगर आपके पास आता है कुछ विश्राम मांगने के लिए भोजन मांगने के, तो आपका द्वार खुला होना चाहिए, आपके द्वार में कुत्ता नहीं होना चाहिए, कुत्ते से सावधान, ये नहीं। तो ये सब जो है वैदिक पद्धति नहीं है, वैदिक पद्धति ये थी। आप संस्थाएं बना दी हैं भाई भूखों को भोजन कराने के लिए, हम संस्था बना रहे हैं और उसका जो है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं और भूखों को भोजन कराने के नाम पर पैसा बटोरते हैं, क्योंकि अब वेद शास्त्र को जानते नहीं हैं, वेद शास्त्र नहीं जानते हैं कि अगला जीवन भी हमें मिलना है और इन कर्मों के आधार पर हमको जो है कुत्ता का शरीर भी मिल सकता है, मैं क्यों ऐसा काम करूं। जो वेद शास्त्र को जानता है तो जानता है कि अगला जीवन तो निश्चित है कि होना है और मेरे कर्मों के अनुसार होना है, तो ये नहीं है कि भाई सबको मैं धोखा दे रहा हूँ, पब्लिक को धोखा दे रहा हूँ और पब्लिक की नज़रों में बड़ा वो बना हूँ, परोपकारी बना हूँ और अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा हूँ। तो वेद शास्त्र को जो जानने वाला होता था वो जानता था कि सब मेरे कर्म लिखे जा रहे हैं
और जब शरीर छोड़ूंगा तो वो कर्म जो है मुझे ही सुनाए जाएंगे और निर्णय भी मुझे सुनाया जाएगा कि मुझे अब कैसा शरीर प्राप्त होना है या नरक में ही रहना है, तो कितने हजारों साल तक मुझे नरक में रखा जाएगा। तो वो डरता था, तो कोई भी काम जो है वो छिप करके भी करने में डरता था, क्योंकि वो जानता है कि वो छिप नहीं सकता, राजा की नजरों से छिप जाए या पब्लिक की नजरों से छिप जाए, लेकिन जो भगवान की व्यवस्था है उसे हम नहीं छिप सकते। ये चित्रगुप्त के बहुत से मुनि बैठे हुए हैं और हर व्यक्ति का खाता लिख रहे हैं, और एक एक मुनि के पास जो है दो दो तीन तीन दूत होते हैं जो उसी व्यक्ति का जो है कर्म लिखवाते हैं और आते जाते रहते हैं, और वो आते हैं और देखते हैं आपके कर्म को और चले जाते हैं और लिखवा करके फिर आते हैं, फिर आपके कर्म देखते हैं, फिर चले जाते हैं, आप उनको नहीं देखते, इसलिए आपका कर्म लिखा जा रहा है। इसलिए कोई व्यक्ति छिप करके भी गलत काम नहीं करता था। तो वेद शास्त्र को जानने वाला व्यक्ति जो है इतनी चेतना में होता है, इतने डर में होता है कि मैं कुछ भी काम करूंगा मैं छिप नहीं सकता हूं, क्योंकि जो छिपे हुए लोग हैं वो मेरा सब कर्म देख रहे हैं और लिखवा रहे हैं मेरा, और वहां पर जो है यमराज के आगे चित्रगुप्त पढ़ के सुनाएंगे मेरे ही कर्मों को, और वहां पर मुझे कोई वकील नहीं मिलेगा, वहां पर कोई वकील नहीं मिलता है, और यमराज जो है सीधे निर्णय देते हैं तुरंत, उसमें केस नहीं चलता कई दिनों तक कि केस चल रहा है। यमराज जो है आपको खड़ा करते हैं और चित्रगुप्त से कहते हैं कि सुनाओ इनके कर्म, और चित्रगुप्त सुनाते हैं और वो निर्णय तुरंत ही देते हैं हाथ के हाथ। आपको छिपकली का शरीर मिलना है तो कहते हैं आप छिपकली बनिए, तो आपका सूक्ष्म शरीर छिपकली बन जाता है और फिर आप आते हैं छिपकली, स्थूल शरीर आप प्राप्त कर लेते हैं। तो यमराज निर्णय देते हैं, और आपको नरक में अगर रखना है तो आदेश देते हैं यमदूतों को कि इसको 60,000 साल तक कुंभीपाक नरक में डालो। तो यातना ही यातना है भोगनी, वहां कोई रक्षा नहीं है। इसलिए व्यक्ति जो है वेद शास्त्र को जानने वाला व्यक्ति बहुत ध्यान से काम करता है, बहुत काम ध्यान से करता है कि मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं तो छिप नहीं सकता हूं, मेरा सब जो है ओपन खाता जो है चल रहा है, खुला हुआ है और लिखा जा रहा है, लगातार लिखा जा रहा है, उसी समय लिख दिया जाता है, जिस समय मैंने गलत काम किया है उसी समय लिख दिया जाता है, सब कुछ लिखा जाता है, है ना। तो वेद शास्त्र को जानने वाला व्यक्ति है, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि भ्रष्ट संस्थाएं, जो भ्रष्ट संस्थाएं हैं तो वो क्या करती हैं, भूखे लोगों को भोजन प्रदान करने के उद्देश्य से जनता से धन एकत्र कर रही हैं, किंतु वे इस धन का निश्चित रूप से दुरुपयोग ही करती हैं। उसका सब हिसाब लिखा रहता है कि इसने कितना तो लगाया भूखों को खिलाने में और कितना इसने अपने नृत्य में लगाया, वो भी उसमें लिखा है, उसके खाते में लिखा हुआ है, किस समय कितना इसने जो है गड़बड़ी की है, वो सब लिखा रहता है पूरा। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वैदिक आदेशों के अनुसार सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि भुखमरी का प्रश्न ही ना उठे, ऐसी व्यवस्था। तो भुखमरी मतलब कभी होती ही नहीं थी, कहीं नहीं होती थी भुखमरी। पहली बात तो यह है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए राजा यज्ञ करते थे, और राजा के यज्ञ से भी और प्रजा भी जो है राजा के आदेशों के अनुसार चलती थी, तो वो भी जो है अपना सुधर्म यज्ञ होता था, तो सुधर्म के रूप में भी प्रजा जो यज्ञ करती थी तो उससे वर्षा होती थी, और वर्षा होती थी तो प्रचुर अन्न होता था, और उस वर्षा से अन्न की जो गुणवत्ता है वो भी इतनी होती थी कि थोड़ा खाने से आपको पूरी शक्ति मिल जाए, अभी आप ज़्यादा खाते हैं तो भी शक्ति नहीं मिलती। कि यज्ञों से जो वर्षा होगी तो उसमें फिर ऐसा भी गुण होगा कि थोड़ा खाने से भी आपकी पूरी शक्ति, आपको पूरी शक्ति प्राप्त हो जाए, और अन्न की मात्रा भी इतनी होती थी कि एक कुंटल जो गेहूं जितनी जमीन में उगता है उतनी जमीन में 20 कुंटल गेहूं भी उग सकता है अगर भगवान को प्रसन्न करें, है ना। और गौएं भी जो है जितना दूध देती हैं, 1 लीटर दूध देती हैं तो 10 लीटर दूध दें, तो ये सब जो है यज्ञ से होता था, भगवान को प्रसन्न करने से होता था। तो जो वेद शास्त्र को जानने वाले जो राजा होते थे वे ये चेतना प्रजा के अंदर पैदा करते थे। तो राजा की ओर से प्रचार कार्य होता था। अभी ये प्रचार की संस्था जो हमारी बनी हुई है क्यों बनी है? सरकार की ओर से कोई प्रचार नहीं है। आज की शिक्षा की ओर से कोई प्रचार नहीं। आज की शिक्षा तो और अज्ञान ही पैदा कर रही है, इसलिए प्रचार की संस्था अलग से बनी है और ये आवश्यक है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि गृहस्थ को चाहिए कि वो छिपकली या सर्प तक को भूखों ना मरने दे, उन्हें भी भोजन दिया जाए। अगर अपने घर में है सांप है छिपकली है ना, तो वो फिर पले होते हैं, अपने घर में पले होते हैं और वो फिर खतरनाक नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थितियों में अपने घर में सांप है छिपकली है उनको भी भोजन दिया जाए। वास्तव में भुखमरी का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि प्रत्येक वस्तु भगवान की है और वे ऐसी व्यवस्था करते हैं कि हर एक को भोजन मिले। भगवान देते हैं भोजन, वास्तव में भगवान भोजन दे रहे हैं। जितनी सृष्टि है भगवान की उसमें मनुष्यों की संख्या तो बहुत थोड़ी है, 1% भी नहीं है, 1000 में से भी एक भी नहीं है, करोड़ों में से भी एक नहीं है मनुष्यों की संख्या। और बाकी जो दूसरी योनियां हैं 80 लाख योनियों में जितनी योनियां हैं उनकी संख्या तो इतनी है कि आप कोई गिनती नहीं कर सकते। और भगवान सबको भोजन दे रहे हैं और भगवान की व्यवस्था है, और कौन व्यवस्था कर रहा है भोजन की? तो भगवान सबको भोजन दे रहे हैं। तो जो मनुष्य के रूप में प्रजा है अगर वो भगवान की चेतना में जो है कार्य करेगी तो भगवान क्यों नहीं देंगे, तो भगवान क्यों नहीं देंगे उनको, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान ही ऐसी व्यवस्था करते हैं कि हर एक को भोजन मिले। आगे वेदों में कठोर निषद 2.2.13 में कहा गया है, एको बहुनाम यो विदधाति कामान। एकमात्र परमेश्वर है और बहुनाम का मतलब है बहुत से जीव हैं, तो वो सब पर वो एक ही परमेश्वर बहुत से जीवों की कामनाएं पूरी करता है। आगे परमेश्वर हर एक को जीवन की आवश्यकता आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है, अतः भूखमरी का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि कोई भूखो मरता है तो तथाकथित शासक अधीक्षक या राष्ट्रपति की दुर्व्यवस्था के कारण ऐसा होता है। दुर्व्यवस्था कि किसी ने अपना जो है जमा कर लिया अपने गोदाम में, है ना, तो 1 लाख बोरी चावल उसने अपने गोदाम में इकट्ठा कर लिया और वो निकाल नहीं रहा है। या सरकार कुछ ऐसा करती है कि समुद्र में डुबा दें, इतना अन्न करोड़ों बोरा अन्न है चावल है वो समुद्र में डुबा देते हैं कुछ राजनीतिक कारणों से। तो प्रभुपाद कहते हैं भुखमरी तो इस कारण से होती है। आगे यदि हाँ, अतः ये स्पष्ट है कि जो व्यक्ति वैदिक आदेशों में पारंगत यानी वेद शास्त्रविद ना हो वो राष्ट्रपति अधीक्षक आदि का चुनाव ना लड़े। आपको जो है चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, आपको उम्मीदवार नहीं बनना चाहिए, कोई उम्मीद नहीं बनना चाहिए, उम्मीद नहीं करना चाहिए ऐसे पद की, इच्छा नहीं करना चाहिए आपको। अगर ना है, अगर क्या नहीं है, वैदिक आदेशों में पारंगत नहीं है, अगर आप वेद शास्त्रविद नहीं है तो आपको उम्मीदवार नहीं बनना चाहिए किसी भी पद के लिए, है ना। आगे पहले के राजा राजर्षि होते थे जिसका अर्थ होता है कि तभी वे राजा की तरह से कार्य करते थे किंतु वे साधु पुरुष होते थे। राज ऋषि, राज ऋषि का मतलब क्या है, ऋषि का मतलब क्या है, विरक्त हैं वो राजा के रूप में भी वो ऋषि हैं यानी विरक्त हैं, इंद्रिय तृप्ति से बिल्कुल विरक्त हैं, ऐसे राज ऋषि होते थे, है ना। आगे क्योंकि वे वेदों की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करते थे और साधु पुरुषों तथा ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार राज्य करते थे। इस व्यवस्था के अनुसार आज के सारे राष्ट्रपति अधीक्षक तथा मुख्य कार्यकारी अपने अपने पदों के लिए अयोग्य हैं। कोई योग्य नहीं क्योंकि वेद शास्त्रों को तो जो है उन्होंने अलग रख दिया है बंद करके, अब खोलना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। उनके जो वेद शास्त्र हैं वो आजकल के समाचार पत्र हैं, अखबार, मीडिया, है ना, तो ये सब उनका वेद शास्त्र है जिसमें कि त्रुटियां ही त्रुटियां हैं और शरीर को आत्मा मानने का एक अज्ञान भरा हुआ है। तो उनके जो वेद शास्त्र हैं वो बस यही हैं, अपने अपने अनुभव के आधार पर सब अपना अपना निर्णय देते हैं, तो यही सब जो है उनका वेद शास्त्र है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, क्योंकि उन्हें वैदिक प्रशासनिक ज्ञान नहीं है और वे बड़े बड़े साधुओं तथा ब्राह्मणों से निर्देश नहीं प्राप्त करते। तो प्रभुपाद से कभी कहा गया है कि आप क्या भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, तो प्रभुपाद ने क्या कहा था, प्रभुपाद ने कहा कि मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं प्रधानमंत्री का गुरु बनना चाहता हूँ। और कभी किसी ने पूछा प्रभुपाद से कि अगर आप जो है पूरे विश्व के शासक बन जाएं तो आप सबसे पहले क्या कार्य करेंगे, तो प्रभुपाद ने कहा कि सबसे पहले मैं वही कार्य करूंगा कि जो अपने को ईश्वर कहते हैं उनको शूट करूंगा। तो अपना व्यक्तिगत कोई निर्णय नहीं है कि मेरा शत्रु कौन है, उस आधार पर किसी को दंड दूं मैं। जो कृष्ण से शत्रुता करता है, जो अपने को ईश्वर कहता है ना, तो उसको मैं शूट करूंगा। तो प्रभुपाद ने कहा है ना, तो ये वेद शास्त्रविद हैं, प्रभुपाद वेद शास्त्रविद हैं, इसलिए प्रभुपाद ने जो ये बात कही। आगे प्रभुपाद कहते हैं, वेदों तथा ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा के कारण ही पृथु महाराज के पिता वेन, राजा वेन को ब्राह्मणों ने मार डाला। तो बेन जो है जिन ब्राह्मणों से उसने राज्य प्राप्त किया, उन्हीं ब्राह्मणों को दान करने की उसने मनाही कर दी कि ब्राह्मणों को दान ना दिया जाए और ना हवन किया जाए, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा कुचित, तो बिल्कुल हवन और पूजा सब बंद कर दो और केवल राजा की पूजा करो, और राजा कौन हूँ, राजा मैं हूँ। तो बेन ने, जब ब्राह्मण लोग बताने लगे कि तुम भगवान की अवज्ञा कर रहे हो तो बहुत बड़ा अपराध है, तो बोला कि किस भगवान की बात करते हो, राजा के शरीर में सब देवता हैं और सब भगवान तो राजा के शरीर में हैं, और तुम दूसरे भगवान की बात कर रहे हो, तुम तो वेश्या की तरह हो, अपने पति को छोड़ करके दूसरे पुरुष की सेवा करती है, तो तुम तो वेश्या की तरह हो। उन्हीं ब्राह्मणों को जिन्होंने इसको राजा बनाया, उन्हीं को ये बोलने लगा, तो ब्राह्मणों ने क्या किया, अपने मंत्रों के बल पर ही मार डाला। उनके पास ऐसी शक्ति थी, राजा बेन को अपने मंत्रों के बल पर, अपने वैदिक मंत्रों के बल पर ही मार डाला, और फिर भी राज्य उन्होंने नहीं भोगा, क्योंकि वे राज्य भोगना उनका काम थोड़ी राजा के, राज्य भोगना, उन्होंने फिर उसी के शरीर का मंथन करके पृथु महाराज को जन्म दिया और पृथु महाराज को राजा बनाया। और वे ये पृथु महाराज ही हैं जो यही कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण लोग ही जो है वास्तव में अधिकारी हैं, उन्होंने तो मुझे दिया है तो मैं उनके सेवक का सेवक हूँ। तो पृथु महाराज ऐसा कह रहे हैं, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः पृथु महाराज भली भांति जानते थे कि उन्हें साधु पुरुषों तथा ब्राह्मणों के सेवक रूप में इस लोक का शासन करना शोभा देता है। तो पृथु महाराज ने सब कुछ अर्पण किया चार कुमारों को, तो पृथु महाराज तो जानते थे कि चार कुमार थोड़ी ये पद लेने वाले हैं, वे थोड़ी दंड देने का अधिकार लेंगे या नेता बनने का अधिकार लेंगे या शासन करने का अधिकार लेंगे, ये थोड़ी कुछ अधिकार लेंगे चार कुमार, हाँ। लेकिन पृथु महाराज क्यों कह रहे हैं, अपनी चेतना को पुष्ट करने के लिए कि मैं वास्तव में इन पदों में से किसी भी पद के योग्य नहीं हूँ, मैं तो केवल सेवक हूँ और आपके आदेश के अनुसार ही कार्य कर रहा हूँ। और चार कुमार जो है इतने बड़े हैं कि ब्रह्मा जी के वो सीधे पुत्र हैं और सबसे बड़े पुत्र हैं, तो ब्रह्मा जी के पुत्रों में भी सबसे बड़े, सबसे सीनियर हैं ब्रह्मा जी के बाद, तो चार कुमारों को उन्होंने मतलब सबसे ऊपर रखा है, और उनके आदेश से जो दूसरे ब्राह्मण हैं ऋषि हैं वो जो कुछ भी आदेश देंगे मैं उनके आदेश का पालन करूँगा, तो मैं चार कुमारों के दास का भी दास हूँ। तो ये जो भावना है ये पृथु महाराज की है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य पूरा हो गया, तो यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि सेनापति का पद, राज्य का पद, दंड देने का पद और नेता का पद और सर्वलोक अधिपत्य का जो पद है, ये वेद शास्त्र को जानने वाले ही को मिलना चाहिए। और जो वेद शास्त्र को जानते हैं तो वे धोखा नहीं देंगे, वो तख्ता नहीं पलटेंगे कि राजा को धोखे से मार डालें और खुद राजा बन जाएं। तो ये सब सेनापति, सेनापति का जो पद है वो बड़ा खतरनाक है, उसके जो है अधीन पूरी सेना होती है और राजा के विरुद्ध ही सेना को अगर उकसा दे तो राजा की हत्या करके वो राजा बन सकता है। लेकिन जो वेद शास्त्र को जानने वाले होते हैं तो वे हमेशा जानते हैं, कृष्ण भावना भावित होते हैं कि मैं जो है अगर अपने अधिकार का दुरुपयोग करूंगा तो मुझे दंड देने वाले भगवान हैं, और अगला जन्म मुझे कैसा मिल जाएगा, घोड़े का भी मिल जाएगा, घोड़े का जन्म मिल जाएगा, मछली का जन्म मिल जाएगा, क्या फायदा। यहाँ तक कि मुसलमानों के जो शासक होते थे तो वे भी जो है अपने नीचे वाले पद में, मंत्रियों के पद में वो हिंदुओं को ही बनाते थे, मुसलमानों को नहीं बनाते थे, कि जानते मुसलमान भी धोखेबाज होते थे। तो मुसलमान शासक भी जो है हिंदुओं को ही ऊंचा पद देते थे, मंत्रियों का पद देते थे, क्योंकि ये वेद शास्त्र को जानने वाले हैं, ये धोखा नहीं देंगे। कोई मुसलमान को अपने नीचे बना दिया तो वो उस मेरी हत्या करके और खुद राजा बन जाएगा, इनका कोई विश्वास नहीं, क्योंकि इनके वेद शास्त्र यानी जो कुरान है इसमें पूरी बातें बताई नहीं गई। गौओं की भी हत्या करते हैं, तो इनके धर्म में, इनके शास्त्र में ही कुछ ऐसी कमियां हैं कि उसके आधार पर ये गौओं की भी हत्या करते हैं और अपने को जो है निर्दोष समझते हैं, तो फिर क्या नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारे वेद शास्त्र हैं वो इतने पूर्ण हैं कि आप एक ही कदम पर आप जो है समझेंगे कि मेरा कर्म जो है नोट किया जा रहा है और दंड की पूरी व्यवस्था अभी से बन रही है मेरे, मुझे ऐसे गलत काम नहीं करना। जो वेद शास्त्र को जानने वाला है वही इतने ऊंचे ऊंचे पदों को पाने का अधिकारी है, क्योंकि उसके पास बड़े अधिकार होते हैं और अपने अधिकार का दुरुपयोग करे तो कितना विनाश कर सकता है। ये बहुत बड़े बड़े जो है पद होते हैं और किसी को मिल जाए तो वो जो है कितना जो है उल्टा काम करेगा और अपने लिए भी नरक का रास्ता बनाएगा और जो है कितनी अव्यवस्था पैदा कर देगा प्रजा में। इसी पृथ्वी महाराज कह रहे हैं कि वेद शास्त्र को जानने वाले हैं उनको ही अधिकार है इन पदों का। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा? मैं प्रश्न करूं, आपका प्रश्न? हाँ, हैंड माइक चालू कर दिया, चालू है, बोलिए।
पहले भी
ठीक है,
लड़ाई के बिना भी राजा का चुनाव,
लड़ाई के बिना राजा का चुनाव होता था,
दो राजाओं में
जो युद्ध होते थे तो ये युद्ध भी जो है कृष्ण चेतना पर आधारित होते थे। कोई राजा अगर दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त करता था और अपने अधीन करता था तो वो जो राजा होता था वो कृष्ण भावना भावित होता था, और जो दूसरे राजा पर वो विजय प्राप्त करता था और वो राजा उसके अधीन हो जाता था तो उससे वो जो है कृष्ण भावना मृत को दूसरे राज्य में भी फैला सकता है इस भावना से।
जो लड़ाई जीती जाती है जो जीतता रहा तो बल इसका जो ज्यादा बलशाली होता रहा वो जीतता रहा। तो जैसे आज की बहस है ना कि आज तो वोट के बिना पे सरकार चली जा रही है, लेकिन पहले तो
यहाँ जब बल होता था, जब बल का प्रयोग करते थे राजा लोग, तो इसमें एक बात ये भी समझना है कि वे स्वयं सेना के आगे होते थे, फिर ऐसा नहीं होता था कि राजा पीछे है और सेना को लड़ा दे और खुद वह सुरक्षित रहे। राजा ऐसे होते थे जो कि सेना के आगे होते थे और राजा की मृत्यु से फिर वो युद्ध भी बंद हो जाता था बड़ी जल्दी। अभी आजकल युद्ध बंद नहीं होते हैं क्योंकि जो राजा हैं, शासक हैं, वो तो अपना छिपे हुए हैं बेसमेंट में सुरक्षित, और जो है जनता जो है निर्दोष जनता मारी जा रही है और इस तरह से युद्ध चलते जाते हैं। उस समय युद्ध बड़ी जल्दी बंद हो जाता था, अगर राजा की मृत्यु हो गई तो युद्ध समाप्त हो गया, है ना। तो राजा खुद होते थे और उनको युद्ध में मृत्यु का वर्ण वो करते थे, तो ये भी उनके लिए बड़े गौरव की बात होती थी। हाँ, भगवान भी गीता में कहते हैं हतो वा प्राप्तसि स्वर्गम, कम से कम स्वर्ग की प्राप्ति तो निश्चित है युद्ध में मरना। सुखना क्षत्रिया पार्थ लभंते युद्ध मित्रसम, भाग्यशाली क्षत्रिय ही ऐसा युद्ध प्राप्त करते हैं। युद्ध में अगर मारे जाएं तो इच्छित लोगों की प्राप्ति होगी, अगर कोई इच्छा नहीं भौतिक भोगों की तो वैकुंठ जा सकता है। तो शरीर छोड़ना और युद्ध में मरना ये एक बड़ा सौभाग्य माना जाता था कि कोई क्षत्रिय है अगर युद्ध में वो मारा जाता है तो वैसे स्वाभाविक मृत्यु मरेंगे तो पता नहीं क्या गति होगी उसकी, लेकिन अगर युद्ध में वो मरेंगे तो उनको निश्चित है स्वर्ग तो कम से कम है ही है, आप समझे ना। तो ये भावना थी, तो गीता में भगवान ये भी बताते हैं कि युद्ध में मतलब अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, जित्वा वा भोग से में, अगर जीतोगे तो पृथ्वी को भोगोगे। हाँ जी, आपका प्रश्न। अधर्मी है, अच्छा प्रश्न है, अधर्मी है अगर वो अधर्म से युद्ध कर रहा है, जैसे दुर्योधन अधर्म के पक्ष में था युद्ध कर रहा था, युद्ध में मारा गया तो उसको भी अच्छी गति मिली, क्योंकि क्षत्रिय का जो है धर्म युद्ध करना होता है, युद्ध चापे पलायनम, युद्ध से ना भागना, तो युद्ध से वो नहीं भागा और युद्ध में मारा गया तो उसको भी अच्छी गति मिल गई, तो ये भी जो है मतलब सौभाग्य है। अगर दुर्योधन जीत जाता तो उसका तो बहुत बुरा कर्म बनता, लेकिन वो मारा गया युद्ध में तो ये भी उसके लिए बड़ा सौभाग्य था। अधर्म करते हुए वो युद्ध में मारा गया तो अपने आप में एक बहुत बड़ा धर्म है, क्षत्रिय का युद्ध करना एक बहुत बड़ा धर्म है, उसमें युद्ध में मारा जाना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है अधर्म के पक्ष में भी। और सेना का तो धर्म है, सेना को तो उससे कुछ लेना देना नहीं कि किसका धर्म का पक्ष है किसका अधर्म का पक्ष है, सेना का तो धर्म है कि वो सेनापति के आदेश पर युद्ध करें, तो जो सेना है उसकी तो गति है ही, सदगति है ही है, चाहे अधर्म के पक्ष में हो चाहे धर्म के पक्ष में हो, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ, क्षत्रिय के लिए जो है कोई दोष नहीं होता, लेकिन जीव हत्या वो ऐसे नहीं करता है, जो मरने के लिए आए हैं उन्हीं को ही मारता है वो, क्षत्रिय जो है ये निर्दोष प्रजा की हत्या नहीं करता है। इतनी मतलब मतलब जनता होती है या यहाँ सेना में बहुत से ढोल बजाने वाले हैं और युद्ध के बाजे बजाने वाले हैं, उनको भी एक घाव नहीं लगता है, वो इस तरह से प्रहार करते हैं कि सामने सामने प्रहार करें, जो खुद मरने के लिए जो है जो तैयार हैं उन्हीं को ही मारते हैं, इतना उनका संतुलन होता है कि निर्दोष कोई व्यक्ति जो क्षत्रिय नहीं है और युद्ध में अगर वो शामिल है कुछ कारण से अगर आया है तो उसको कोई घाव नहीं लगेगा, उसे कोई घाव नहीं होगा। नहीं, आजकल तो निर्दोष प्रजा को ही मारते हैं, सब निर्दोष प्रजा को ही मारते हैं, जो बेचारे अपने जीवन की आशा लगाए हैं और अपना कुछ दैनिक कार्य कर रहे हैं तो वहीं पर बम गिरा करके और उन्हीं को ही मारते हैं, युद्ध यही है, कोई सेना नहीं है, बस वहाँ बम छोड़ दिया, उधर बम छोड़ दिया, इधर मारा इधर मारा, निर्दोष लोगों की हत्या होती है, आज का युद्ध ऐसा है। हाँ, पहले के राजा शिकार करते थे तो शिकार करना उनका जो है ये उनको अधिकार था शिकार, क्योंकि शिकार के द्वारा उनका अभ्यास होता था कि कैसे निशाना लगाया जाए शत्रु के ऊपर, और वैसे राजा अक्सर शिकार करते थे हिंसक पशुओं का, और जो हिंसक पशु हैं वो वन में रहने वाले जो ऋषि मुनि हैं तो उनके उनको बाधा डालने वाले थे, तो राजा उनका शिकार करते थे, लेकिन हाँ हरण जो निर्दोष हैं उनका भी शिकार करते थे, निशाना लगाने का अभ्यास करने के लिए कि दौड़ता हुआ भी कोई शत्रु है कैसे निशाना लगाएं, हरण बहुत तेज दौड़ता है, तो इस तरह से भी करते थे। लेकिन ये चूंकि उनका अभ्यास होता था ताकि वे जो है युद्ध में जो निर्दोष प्रजा है उसकी रक्षा कर सकें, तो इसलिए उनका ये दोष दूर हो जाता था अगर वो युद्ध में फिर भाग लेते थे और अपने प्राणों को संकट में डालते थे। हाँ जी, एक सेकेंड, एक सेकेंड। माइक चालू करो, चालू कर दो सर। हाँ, अभी थोड़ी देर में आएगा।
हाँ, आपने बताया था कि जो सांप और छिपकली है हमारे घर में भोजन देना चाहिए, लेकिन जैसा याद है एक लेक्चर में सुना था कि जब उपाध्य के जो गुरु थे उनके आश्रम में एक बार सांप निकला था, मारने के
लिए। इनका अच्छा प्रश्न है, यहाँ प्रभुपाद बताते हैं गृहस्थ के लिए ये, तो यहाँ गृहस्थ के लिए जो सांप घर में रहते हैं तो वे कुछ ऐसी स्थिति में होते हैं कि वे एक तरह से पालतू हैं, तो ऐसी स्थिति में सांप को भोजन दिया जाता है। लेकिन ये हमेशा ये नियम नहीं है ऐसा, लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं तो कुछ स्थितियों में ऐसा किया जा सकता है, ये हमेशा नहीं। अगर सांप से खतरा है तो भाई इसकी हत्या कर दो, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तुरंत आदेश दिया कि इसकी हत्या कर दो, है ना। तो जहाँ खतरा है कि ये काट सकता है किसी को और किसी की जान जा सकती है, तो समय है सबसे पहले यही कार्य करना चाहिए। ठीक है, हाँ जी।
शायद प्रभु जी मेरे ख्याल से गांवों में कुछ सांप होते हैं मिट्टी के घरों में, तो वो आदमियों को कुछ नहीं करते, वो पक्षियों को या चूहों को इस तरह से खाते हैं, तो शायद उनको भोजन
से वो उनकी। हाँ, वही मतलब है, कुछ प्रभुपाद जो बता रहे हैं कुछ उसी तरह की कुछ बात है कि जो मतलब खतरा ना हो तो हम जो है ऐसी स्थिति में कर सकते हैं। आपने कुछ कहा था, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ बोलिए। हिरण का शिकार अनुचित तो है, लेकिन फिर एक उचित कारण यही है कि राजा को जो है, ऐसा है कि हिरण अगर मिलता है और हिरण का में भी वो निशाना लगाते हैं, हैं, तो वो निशाने को अभ्यास करने के लिए वो कोई भी अगर मतलब पशु मिलता है और तेज दौड़ने वाला हिरण होता है, तो ऐसी स्थिति में वो निशाने का अभ्यास करने के लिए वो ऐसा करते हैं राजा लोग। ठीक है,
प्रभु जी। हाँ जी, आपने कि सूकर परिवार था जो कि इक्ष्वाकु वंश
हाँ, जो राजा कृष्ण भावना भावित होते हैं तो भी अगर कुछ करते हैं ऐसी हत्या का कार्य तो उन पशुओं का भी जो है लाभ होता है। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौरताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय हो। इनका तो फिर अब टाइम ही नहीं था ना।
जो सांप बिच्छू वाला है।